أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة، ایک دفعہ اس پہ ہم ایک ہلکی سی نظر ڈالیں گے کہ ہم دن میں 5 دفعہ نمازوں میں اس صورت میں کیا پڑھتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت ہم سورة الفاتحة کو اپنے محاسبے کی نظر سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بھی مالک ہیں اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن خاص طور پر اس کی ملکیت ہے. اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تجھ سے ہی ہم خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوئے. یہ تو تھا تھوڑا سا اس کا ایک قسم کا لفظی ترجمہ، لیکن اگر ہم اس کو ایک سٹریچ میں دیکھیں تو مفہوم کیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو تمام مخلوقات کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہتا ہے، نہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوئوں کا. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. ہم اس کی اس وقت تفسیر میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سورۃ کا جو نام ہے الفاتحہ، یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. کیا؟ کہ فاتحہ کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنے والی. فتح کا لفظ ہے کھولنا. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے فاتح. فاتح مصر کس کو کہتے ہیں؟ کسی شہر کو کنکر کرنے والے کو کہتے ہیں. تو فاتح سے فاتحہ. قرآن کیا ہے؟ کھولنے والی ہے. کس کو کھولتی ہے؟ ایک انسان کی زندگی کے اندر جتنے مسئلے، جتنی اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، اس کا جواب کہاں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں. اگر ہم دیکھیں تو صرف 7 آیتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی اندر ایک ایسی سورت ہے کہ جس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس سورت کی ایک ایک آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ایک ایک پورا پورا مضمون دکھتا ہے. اگر آپ یہ کہہ لیجئے کہ اصل قرآن مجید جو ہے نا، وہ سورت فاتحہ کے بعد شروع ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے نا، یہ قرآن سے الگ ہے. یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے شروع میں لگائی جاتی ہے، ورنہ سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو قرآن مجید اور ساتھ ہی ساتھ سبم من المثانی دیا، یعنی سورۃ الفاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ انڈیکس آف قرآن. جیسے آپ کوئی بک کھولتے ہیں تو اس سے پہلے شروع میں انڈیکس ہوتا ہے نا، اس میں کیا مضمون ہے، اس میں کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے. بالکل سورۃ الفاتحہ کے اندر اسی طرح سے ہم اس کے اوپر اگر غور کریں نا، تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں. پہلا حصہ اس کا کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ 3 جملے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے. 3 آیتوں میں کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ کا تذکرہ ہے. تعریف بھی اسی کی. ہم کا جو لفظ ہے نا، اس میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں سارے شکر اللہ کے ہیں. کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کی ذات ہی کے گنگاؤ. ہم ذرا سوچیں اپنی زندگی میں، پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جو سکھایا ہے وہ اپنی تعریف کا سکھایا ہے، کیونکہ اللہ اس کے لائق ہے. ہماری زندگی میں جہاں بھی کمی ہے نا، نماز روزے سے لے کر अल्लाह की बात के मानने या ना मानने से उसकी वजह क्या है कि हमें अल्लाह की कदर नहीं है, अल्लाह की मार्फत नहीं है। दुनिया में भी ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, ना कदरा। कोई अगर अपनी माँ की कदर ना करे और उसके आगे बदतमीजी करे या उसकी कहना ना माने तो हम कहते हैं कि इसको कदर नहीं है। जब माँ नहीं रहेगी ना फिर इसको कदर आएगी। कोई शोहर अपनी बीवी के साथ गलत रवैया रखे तो हम कहते हैं कि इसको इसकी कदर नहीं है। यही मामला बीवी का शोहर के साथ भी हो सकता है। ये तो इंसान है ना, हम जैसे, हम जैसी मैं वैसे आप, जैसी माँ वैसा बच्चा, एक ही जिन्स है ना, जैसी माँ वैसी बेटी। फर्क ही है ना, चंद साल पहले दुनिया में आ गई, बस इतना ही फर्क है। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ खालिक और एक तरफ इंसान। अब वो खालिक कौन है, उसने क्या बनाया? वो लफ्ज कह देना कि अल्लाह, बड़ी बात है, आसान सी बात है। लेकिन जब हम अल्लाह की सिफात पे गौर करते हैं, वो क्या है, उसने हमारे लिए क्या बनाया, आप जरा एक लम्हे के लिए इस कायनात पे गौर व फिक्र करके देखिए, तो फिर इंसान को पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात इंसान के लिए क्या कुछ सजाए बैठी है और उसने क्या कुछ इंसान को दिखाया हुआ है। कभी हम अपने इर्द गिर्द गौर करें तो हमें क्या कुछ दिखता है। यानी अगर आप चार मौसम देखें, अगर इस वक्त आप आसमान पर देखें, क्या आपने कभी सोचा कि जो आसमान हमारे सामने है ये किसने बनाया? ये बादलों की तरह, जो रुई की तरह तैरते हुए बादल हैं, ये क्या है? शायद आप, मुझे नहीं आपका पता कि आपके कितने मसरूफ लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग गया कि हमने बाहर देखना ही छोड़ दिया? पहले फिर भी कोई गर्मी सर्दी शाम के वक्त कोई लोग निकलते थे तो उनको दिखता था बाहर। आज छत, अब छतें ही देख के खुश होते हैं, ये किसने बनाई, ये पंखा किसने बनाया, ये एसी किस कंपनी का है। जो कुदरती माहौल में इंसान रहता है ना, उसको अल्लाह से प्यार होगा, और जो आर्टिफिशियल माहौल में रहेगा उसको बंदों से प्यार होगा। एक जगह मैं गई, किसी कंट्री की, और कंट्री की बात है, तो वहाँ एक मॉल था, तो उस मॉल के अंदर उन्होंने पूरा आर्टिफिशियली आसमान बनाया हुआ है। तो मैंने कहा इतनी तरद्दुद की क्या जरूरत है, बाहर देख लो। यानी लोग और लोग उसको देखने जाते हैं कि अंदर जाएं तो ऐसे लगता है बाहर खड़े हैं, लेकिन हम एक मॉल के अंदर हैं। क्या है जी, उन्होंने कोई ऊपर शीशे का बना के और ऊपर कोई आसमानी रंग के करके आके दिखा दिया कि देखो ये आसमान जैसा लगता है। तो कभी आसमान को देखो, कभी सोचा हमने कि ये जो बर्फ गिरती है, जो कायनात के अंदर इतने रंग बदल रहे हैं। आजकल गर्मी है ना, जाने वाली है, आगे आप सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तो इतना ताजुब नहीं आपको होता होगा, लेकिन नॉर्वे में जहाँ से मैं आई हूँ, तो वहाँ साल के चार महीने होते हैं और चार मौसम है, और इतने क्लियर एक्सट्रीम है हर चीज़। यानी आप इसको यूँ समझिए कि साल में चार डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हर तरफ दिखते हैं। मसलन आपको अगर सर्दियों से शुरू करके बताऊं कि जैसे आजकल वहां सर्दी शुरू हो गई है, किसी भी वक्त वहां बर्फबारी शुरू होने वाली है। नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक आप बाहर जहां से खोलेंगे, अपनी खिड़की खोल लें बाहर, आपको हर चीज सफेद दिखेगी। अंदर दरख्तों की सूखी डालियां कहीं है तो वहां उसमें से ब्राउन रंग दिखता है, लेकिन बिल्कुल एक सफेद चादर है जो पानी की ऊपर सही होते है। हर चीज पे पानी की तह जमगी, बर्फ है। आपके घर बर्फ के अंदर, आपकी गाड़ियां बर्फ के अंदर, जो चीज जहां पड़ी है ना वो बिल्कुल वहीं जम गई है। किसी की साइकिल अगर चार दिन बाहर खड़ी रही है तो आप बाहर चार दिन बाद आएंगे तो साइकिल के ऊपर एक एक फुट लंबी पूरी एक और साइकिल बन चुकी है। बर्फ की बर्फ है ना, हर चीज पे बर्फ है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि जब बर्फ ढलेगी, बीच में जो वक्त आता है जिसको आप कह सकते हैं कि नॉर्वे की अंदर, यानी बहुत मुख्तसिर सा वो वक्त होता है जिसको स्प्रिंग कहते हैं आप, वो दिन जो होते हैं ना वो देखने के होते हैं कि जिसमें बर्फ जब ढलती है, यकीन करें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। उन्हीं रास्तों से आप गुजर के जाते हैं, बिल्कुल ऐसी सूखी डालियां, जैसे ये आर्टिफिशियल यानी या सूखी इन्होंने खुश्क रखी हुई है ना। आप कुछ सोच सकते हैं कि यहाँ आप आज देख रहे हैं ये ऐसी, और चार छह दिन बाद आए और ये बिल्कुल पत्तों से भरी हो? यकीन नहीं आता कि ये रात को बैठ के इसमें किसी ने आर्टिफिशियल पत्ते झड़ दिए। एक हफ्ते के अंदर वो सूखी डालियां फिर पत्तों में बदल जाती हैं, और ऐसे जैसे फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबता है, फिर हर चीज सब्ज होने लगती है, खिला हुआ और सब्ज के कितने शेड के, जिसके अंदर समर के दौरान भी इस तरह है। फिर उसके बाद जब खूब खुल के समर आता है, जैसे मई जून आ जाएगा, उसके बाद क्या होता है, फूलों का मौसम शुरू होता है। हर 15 दिन के बाद तकरीबन आप वॉक करते हुए रस्तों से जाएं, فطرت نے کیا ہوا ہے. میں تو کہتی ہوں اللہ کی ذات کی پلاننگ ہے, کون وہاں درخت دیوار سڑکوں کے کنارے پہ پھولوں کے پودے لگائے گا یا کرے گا. ایک سال کا بیج جب ختم ہوتا ہے اسی میں دب جاتا ہے. مثال ہے کہ 15 جون سے لے کر 15 جون کو پودا جو چلتا ہے نا, ہر طرف آپ کو اگر بل کاسنی رنگ کے پھول آف اسکن پرپل کلر کے, ہر جنگلوں میں درختوں میں اب 15 جون سے لے کے 1 جولائی تک آپ کو ہر طرف کاسنی کاسنی دکھیں گے. بس وہ کھلتے ہیں پھر کچھ دن کے بعد مرجھاتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے جو ہی اگست کا شروع ہوگا نا تو ایک دم وہ سب ختم. پتا کیا چلتا ہے کہ اس کے سب بیج واپس زمین میں چلے گئے ہیں, اور زمین میں کوئی پچھلے اگست کے پڑے ہوئے سفید پھولوں کے پھول اگ گئے. پھر آپ کو اگلے 15 دن ہر طرف سفید پھول, پھر اس طرح پیلے پھول, یہ پھول سمر کے یہ رنگ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ سمجھے کہ اگست سپٹمبر ہے, اس کے بعد فال, یعنی جس کے اندر رنگ اورنج نیلے اورنج ریڈ میرون پھول ہے. یعنی ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ کون کر رہا ہے, کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ جو یہ رنگ اتنی جلدی بھرے. انہی رستوں سے ہم گزرتے ہیں, پہچان ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے اگر پہلی دفعہ انہی رستوں سے اچانک گزرے تو آپ کہیں گے یہ کوئی اور راستہ ہے, برف میں وہ اور لگ رہا ہوتا ہے سوکھی جا, اور جب درختوں سے پتے جھڑتے ہیں فال کے بعد اتنی اداسی, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی ماں کے سارے ہی بچے مر گئے. اس طرح وہ ڈنٹل, کوئی مانتا نہیں کہ ان درختوں کے اوپر کبھی کل کچھ لگے گا, لیکن پھر بہار آتی ہے تو وہ چل پڑتا ہے. اللہ کی ذات یہ کون کر رہا ہے, ہم کیوں نہیں سوچتے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ہماری گودوں میں جو بچے پلتے ہیں کبھی ہم نے ان کو دیکھا, دکھاتی ہوں آپ کو. ویسے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, یہ دیکھیے یہ کیا. اگر آپ رب العالمین کو دیکھتے ہیں نا, یہ ایک بچہ یا دو بچے ماں کے پیٹ میں دکھ رہے ہیں نا, کس نے بنایا؟ ماں کو خود بھی نہیں پتا. ہم کہتے ہیں نا رب العالمین, یہ رب العالمین. یہ دیکھیے ماں کے پیٹ میں بچے کا پیٹ, یہ پاؤں, یہ آپ کو دکھ رہا ہے تو اسکرین پہ, یہ ماں بچے کا پیٹ ہے, بچے کا پاؤں ہے ماں کے پیٹ میں. کس حال میں بچہ دنیا میں آتا ہے, یہ اوپر جھلی چڑھی ہوئی ہے اس کے, اور جب اترتا ہے تو اندر سے آپ دیکھیے کیا معصوم اپنے آپ کو سمیٹتا ہوا بچہ. کوئی بنا سکتا ہے؟ آپ کے گھروں میں نیو بورن بیبی ہے کسی کا؟ اچھا میری کزن ہے تو اس کا بیبی ہوا ہوا, تو میں اس کو پیار کرتی ہوں, وہ سوچتی ہے میں اس کی وجہ سے کرتی ہوں. میں نے کہا میں تمہاری وجہ سے نہیں کرتی, ظاہر ہے کہ یہ لاڈ ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا میں اس کو اللہ کی مخلوق سمجھتی ہوں. کبھی ہاتھ دیکھے ایسے گدلے گدلے, گول مٹول ہاتھ, پاؤں نرم نرم, چکس کو ہاتھ لگائے نرم, بال نرم, کون بناتا ہے؟ ماں کیسی ہے, ماں کے پیٹ میں کتنا کچھ ہے, اور اندر آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات کیا انسان کو پیدا کرتے ہیں. یہ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا سر اتنا چھوٹا ہے کہ جو اس کے دنیا میں آنے کے راستے میں مددگار ہے. یہ کوئی ڈاکٹر کر سکتے ہیں؟ کسی کے اختیار میں ہے؟ اتنا معصوم بچہ اتنے اندھیروں سے نکل کر اللہ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے. کبھی سوچا ہم نے کون بناتا ہے؟ ہم تو نخرے ہی کرتے ہیں. بچہ پیدا جو اس کے اوپر بھی تبصرے ہی ہوتے ہیں, اس کی ناک موٹی, اس کا کان ہے, یہ چپٹا, اس کا رنگ دبا ہوا ہے. لیکن اللہ کو پہچاننا ہے تو صرف اس کو دیکھ لیجیے. رب کہتے ہی ذرے کو کمال تک پہنچانے والی ذات کو ہے. ایک پانی کی بوند کو اللہ کتنے مرحلوں سے گزار کر اتنے خوبصورت بچے کے روپ میں لے آتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیجیے, اپنے بچوں کو دیکھیں, جا کے دیکھیں. دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ بڑا یاد آتا ہے, ایک نیو بورن بیبی اور ایک 70-80 سے اوپر کے بڈھے بڈھیاں, کیسے جھریوں سے بھرے ہوئے. وہی ہاتھ جو کسی وقت ایسے گدلے ہاتھ ہے, آپ دیکھیے کہ جب جھریاں پڑتی ہیں اور جب خشک ہوتے ہیں, کوئی مان سکتا ہے ان کی جوانی میں بھی کبھی ان کے اوپر حسن تھا؟ کبھی آپ دیکھیں کہ بالکل بچہ جو ہوتا ہے وہی بڑا بھی ویسا ہو جاتا ہے. سورج یاسین میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی سیریز کے اندر, اگلا جو لیکچر ہے سورج یاسین جب شروع ہوگی تو اس میں ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم وقت کے ساتھ خلق کو پھر پلٹ دیتے ہیں, بچہ اور بوڑھا ایک برابر. بچہ بھی روتا ہے بات بات پہ, بوڑھا بھی بات بات پہ روتا ہے. بچہ چل نہیں سکتا تو بوڑھا نہیں چل سکتا. بچہ صرف لیکوڈ پیتا ہے تو بوڑھا بھی آخر بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بالکل سافٹ پہ آ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بچے بھی بعض دفعہ اپنے جسم کی جو گندگی ہے اس سے بالکل ذرا اپنے آپ کو پاک نہیں کر پاتے, تو بوڑھے بھی اس طرح نہیں کر پاتے. بچے کو بھی لوگ اٹھا کے پھرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے بوڑھے کو بھی اٹھا کے پھرتے ہیں. اتنے مرحلے جس انسان کی زندگی میں ہو, کیا اس کو اللہ کی قدر نہیں آنی چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو ہمارا دل کیوں نہیں ہل جاتا کہ اللہ کی ذات کس طریقے سے اپنی تخلیق کے رنگ ہمیں دکھاتی ہیں. ایک چھوٹا سا بیج زمین میں آپ ڈالتے ہیں اور ایک کھڑی فصل تیار ہو جاتی ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ غور کرنا چاہیں, अल्लाह की इस कायनात पे गौर कर लीजिए। जहां मैं और आप बैठे हैं ये देखिएगा जरा जमीन, जिसको हम जमीन कहते हैं, अगर आप इस वक्त थोड़ा सा, ये मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, ये देखिए ये जमीन है, ये नीले रंग की, ये वीनस है, सेवन स्टार्स है ना मुख्तलिफ, ये देखिए ये मार्स, ये मुख्तलिफ सितारे हैं जो हम अजरामे हल्की में देखते हैं, उसमें जमीन कितनी बड़ी है। लेकिन अब आगे आगे जरा देखिए कि जमीन कितनी होती जाएगी। अब जमीन किधर गई आपकी, ये देखिए ये नीचे पड़ी है ना जमीन, इस जमीन से कई गुना बड़े ये जुपिटर, ये देखिए ये नेपच्यून, यानी ये जो आपको छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सैारे हैं, इनका साइज कंपेयर किया गया कि ये जमीन इनके अंदर कितनी बड़ी है। ये किधर गई जमीन, ढूंढे जरा, इधर है वो एक, जरा ये है जमीन और ये सूरज है। यानी सूरज का साइज जमीन के साइज के मुकाबले में ऐसे, जैसे ये एक छोटा सा बीट मोती का, ये आपकी जमीन है और ये सूरज है। और इतना बड़ा सूरज अल्लाह ने इस जमीन से इतनी दूर रखा है तो हम इससे फायदा उठा रहे हैं, वरना हम इससे फायदा नहीं उठा सकते थे। आप सोचिए कि आप देखिए कि जब हम, ये जमीन है, जब ये जमीन इतनी छोटी है इस इतने बड़े सूरज के मुकाबले में, तो इस जमीन के ऊपर हम कहाँ है। ऐन तजिद नफ्सुकल आन, तू बता तेरा नफ्स कहाँ है, इतनी बड़ी जमीन छोटी हो जाएगी तो उसमें से तू किधर है। फिर आप ये देखिए इसमें कुछ फिगर्स हैं कि किस तरह इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हैं, और आप सोचिए कि इस जमीन पे रहने वाले इस सूरज चांद सितारों के का रब कितना बड़ा होगा, रब्बिल आलमीन। बहुत कम सोचते हैं, दुनिया में किसी की चार कनाल का घर देख लें तो हमारी नजरें झुकने लगती हैं उसके आगे, हम कहते हैं इनसे भी ज्यादा कोई खुशकिस्मत है। लेकिन हम कभी अल्लाह की इस कायनात पे गौर नहीं करते, क्या कुछ उसने हमारे लिए बना दिया, क्या कुछ उसने सजा दिया, कितना हुसन बखेर दिया, क्या कुछ उसने हमें इस कायनात में दिखा के खूबसूरतियां बांट दी, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। इसलिए जब कायनात के ऊपर गौर करेंगे, देखेंगे अल्लाह अल्लाह की कुदरत। ये देखिए रब जो लफ्ज है ना, ये इसको अगर आप आगे करते जाएं तो इसके हजार हर डिफरेंट पहलू हैं, यानी इतनी मखलूकात है कायनात में। अब ये देखिए ये मेंढक है, सबस रंग का है ना, इसके इर्द ये केमोफ्लेज होते हैं, फितरत ने इस तरह से जानवरों को का तहफ़ किया है कि इन बेचारों की कौन सी कोई सिक्योरिटी गार्ड है जिन्होंने इनको बचाना है। जिस रंग का माहौल होता है ना, ये उस रंग का अपने आप को बदल लेते हैं। ये देखिएगा अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये पानी के अंदर का कीड़ा और ये फूल है, ये फूल है उसके साथ पत्तियां और ये कीड़ा एक। अल्लाह ने इन दोनों को एक रंग का क्यों कर दिया कि कोई दूसरा बड़ा जानवर आके इसको ना खा सके, माहौल से मुताबकत है। इस पे पहचानिए क्या, कोई आपको इसमें मखलूक दिख रही है, ये क्या है, पत्ते हैं, है सूखे पत्ते हैं ना, ये देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा, ये देखिए ये इसके अंदर कीड़े, जिस तरह ये जंग दरख्तों पे चलने वाली जैसे तितलियां और चींटियां, बस ऐसी चीजें होती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से एक देखा, किसी जगह में हम एक्वेरियम देख रहे थे, मुझे याद नहीं कौन सा मुल्क था, तो आपने देखा ना एक्वेरियम पानी के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मछलियां रखी होती हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर की चीजें होती हैं। तो हम एक जगह थे तो उधर एक लिखा हुआ था बाहर, जो नाम छोटे छोटे लिखे हैं, तो वहां लिखा हुआ था स्टोन फिश। तो हम देख रहे थे, खड़े थे, तो हमें कोई फिश नहीं दिख रही उसमें, तो वो बीच में चल फिर रही होती है, हम काफी देर खड़े रहे और हमने कहा शायद कहीं अंदर गई भी है, चीजों में उन्होंने अंदर आर्टिफिशियल चीजें भी बनाई होती हैं। हैरत गुम हुई कि थोड़ी जब हम मायूस हो गए, हम हिलने लगे ना, तो वो जो वहां पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा था ना, हम समझे वो पत्थर है, वो फिश थी, उसने अपनी टांगे हिलाई तो पता चला वो फिश है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं सोच पाते। ये देखिए जिस रंग का दरख्त है उस रंग की तितली को अल्लाह ने बना दिया कि कोई इस तितली की जान ना ले सके। हमें तो अपनी फिक्र है ना, अल्लाह को अपनी मखलूक की फिक्र है। ये लिस जैसे ये की, क्या बोलते हैं इसको, छिपली कह लें या लिजर्ट टाइप की एक चीज होती है जो ये सबस पौधा है उसी के ऊपर उस रंग की है कायनात के अंदर। ये देखिए ये नीचे पौधे और ये पौधे और कीड़े एक ही रंग के हैं, क्यों किए अल्लाह ने ऐसे, ताकि कोई इनको नुकसान ना दे। ये देखिए ये कीड़ा, ये वाला, ये चीज, ये इसका सर, ये मगरमच्छ टाइप की कोई चीज है, और नीचे जो पत्थर है और उसकी चट्टाने वो एक ही रंग की है। तो अल्लाह की जात पे जब गौर व फिक्र करें, जब उसको मोहब्बत से देखें, तो आप दंग रह जाएंगे। थोड़ा सा नेचर से प्यार करें, निकलें, गमों को छोड़ें, खाने पीने को छोड़ें, एक खाते हर चीज की, पहन ना ओढ़ना, शॉपिंग, ये दुनिया के गम, गम को भी एक दफा छोड़ दें। छोड़ो गम तो मैं बाद में पकड़ूंगी, जरा मैं अपने अल्लाह से बातें करूं। सूरज डूबता है तो उस वक्त अपने रब से बात करें, जब सूरज सुबह निकलता है तो देखें आपको ये ठंडी ठंडी हवा जब जिस्म को लगती है आपको, फिर उस वक्त प्यार आता है कि हमारा रब कौन है। और आज अफसोस की बात है कि हमने अपनी नस्लों को इतना सुस्त कर दिया, हमने उनके इतनी उनकी लाइफ के अंदर लग्जरीज रख दी कि अब वो कई कई दिन तक हो सकता है सूरज ही ना देखते हो। कभी आप देख लीजिए कि कभी लोग खुले आसमानों में सोते थे, आप सब ने भी सोए होंगे, हम भी बहुत दफा सोए हैं, कैसे रात को ठंडे बिस्तर पे जाके इंसान लेटता और आसमान को देख के अल्लाह से बातें करता, सितारों को देख के आंखें बंद हो जाती थी और उसी में अल्लाह की साथ बंदे की बातें। जब उठेंगे तो किसी को मच्छर लड़ रहा है, तो किसी को मक्खी लड़ रही है, तो किसी को अगर हो सकता है कि बाद में सूरज की गर्मी की वजह से उठना पड़े। नेचर से बराह रास्त रब्ता होता है, लेकिन जितना हम नेचर से दूर होते हैं उतना हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह तला की कमी महसूस होती है। मुझे तो डर लगता है कि आने वाली नस्लों को तो याद भी नहीं रहेगा। यकीन करें, मैंने काफ़ी साल हो गए अब तो, अमेरिका में थे हम, तो ऐसी बातें हो रही थी, कोई आयतें थी कुरान की, तो ऐसी मैंने दूध की बात हुई तो कि कैसे अल्लाह ने काली भैंस में से दूध निकाला, ये भी एक अल्लाह की कुदरत है। तो मैंने ऐसी बच्चियों से पूछा, मैंने कहा आपको पता है कि दूध कहाँ से आता है? अब मेरा इशारा क्या था कि भैंस से आता है, तो सारी बोली फेस्टा से आता है, HEB से आता है, वहाँ के दो स्टोर उनके नाम ले दिए। आप हैरत की बात है कि कुछ बच्चियों को ये नहीं पता था कि ये किसी जानवर के पेट से आता है। उन्होंने कहा बस हमारे घर में टेट्रा पैक में आता है, खोलते हैं पी लेते हैं। तो रब से ताल्लुक जोड़े। अगर आपने अपने बच्चों के भी दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालनी है ना, तो उनको कायनात पे गौर करना सिखाएं। फिर उसके बाद आप देखिए कि अर्रहमान अर्रहीम, उस रब, ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर थी, अगर आपने गौर से इसको देखा हो, ये दरख्त है, ये दरख्त का तना, ये देखिए तना, और इसके अंदर एक छोटा सा सुराह है, ये चिड़िया बैठी हुई अंदर, पहचान पा रहे ये चिड़िया, और जो चिड़िया के रंग है वही दरख्त के रंग है कि इस चिड़िया को कोई पकड़े ना, है ना। वो सबका रब, वो सबको खिलाता है, उसको सबकी फिक्र है, सबके लिए वो माँ। ये सांप है और उसके इर्द गिर्द उसी रंग के पत्ते और घास है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हकीकत में हमें अपने बारे में सोचने वाला बनाए। ये देखिए टेडी बियर, सफेद रीछ है, बर्फ में होते हैं तो इनको सफेद क्यों अल्लाह ने बनाया है? ताकि इनका तहफ्फुज़ हो सके। अगर ये सफेद पे सुरख रंग के रीछ होते, दूर से इनके दुश्मन आते इनको खा जाते। ये एक वक्त ऐसा आता है कि ये बर्फ के अंदर पूरा दब जाता है और अपने आप को छुपा लेता है कि कोई इसको नुकसान ना दे। ये देखिए लिजर्ट दरख्त के ऊपर, जिस रंग की खाल, ये दरख्त की छाल है, ये इसकी लिजर्ट की है। ये देखिए शेर है और उसको झाड़ियां उसी रंग की हैं। आपने कभी देखा होगा जो आर्मी होती है, फौजी, वो उसी रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हैं? कभी सोचा आपने? वो जो मैरून स्किन और ब्लू ग्रीन, इसीलिए कि जब वो जाए तो घाट झाड़ियों में छुपे तो ऊपर से उनको दुश्मन ना देख ले। तो अल्लाह को अपनी मखलूक का बड़ा फिक्र है, इसलिए हमें उससे मोहब्बत करनी है। इस पे गौर करेंगे तो फिर उसका रहम दिखेगा कि अर्रहमान अर्रहीम, कि उसने किस तरह रहम किया। अल्लाह की जात जो है वो इतना रहम करने वाली जात है कि जो सिर्फ इंसानों पे नहीं जानवरों पे भी रहम करती है। बस दफा हम ये सोच लेते हैं कि वो सिर्फ इंसानों के लिए रब है, वो जानवरों का भी है। और रहम का जो लफ्ज़ इधर आता है ना अल्लाह ताला के लिए, इसको भी समझ लीजिए कि रहम का जज्बा उर्दू में कितना मारूफ लफ्ज़ है। ये वही है जो माँ के दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत होती है। 9 महीने बच्चा जिस जगह में जाता है उसको माँ का रहम कहते हैं, और उसके अंदर अल्लाह ताला बंदे को खिलाता है। बाहर आके हम क्यों परेशान हो जाते हैं कि हम नहीं खा सकते और पता नहीं हमारे साथ क्या होगा और पता नहीं हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन खिलाएगा कौन नहीं खिलाएगा? अल्लाह की ज़ात है खिलाएगी। अल्लाह के रहम का हाल अगर काफिर और फाजिर को पता चल जाए ना, तो वो अल्लाह से जन्नत की उम्मीद लगा ले। और मोमिन और मुत्तकी को अगर अल्लाह के जबर और उसके कहर का यकीन आ जाए ना, तो कभी भी जन्नत की उम्मीद ना लगाए। इतनी एक्सट्रीम पे उसकी बातें, लेकिन हम फिर भी उसके लिए गौर व फिक्र काम करते हैं। फिर आप देखिए कि मालिक यौमिद्दीन, जब शुरू की बातें पढ़ी तो ऐसे लगता है कि अल्लाह पे प्यार आ रहा है, लेकिन मालिक यौम दीन पड़ा तो साथ ही फिक्र पड़ गया कि हमने उसके पास जाना, क्या तैयार किया, बदले का दिन। आप देखिए कि आज दुनिया में भी बहुत सारे बादशाह हैं, लेकिन कल उस रब ने हमारे लिए वहां जो कुछ तैयार किया है, अगर अच्छे काम करेंगे तो वहां अच्छा होगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र इंसान को पुकारती है, हम सब का एक सफर आने वाला है और वो यौम-ए-दीन का सफर है। हम सब इस दुनिया से एक वक्त में जाने वाले हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। वइन्नमा तुवफ्फूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह कहता है कि तुम सब उस दिन अपने बदले दिए जाओगे। ये देखिएगा जरा, एक आखिरत का सफर है कि हम एक तसव्वुर में लाइए कि आप एक जहाज में बैठे हुए और ये आपकी फ्लाइट है और इसके अंदर क्या हो रहा है, द ग्रेट जर्नी। हम में से कोई भी जब भी जहाज पे बैठता है, एक दफा तो मौत याद आती है ना, आती है कि नहीं? जब जहाज ऊपर उठता है फिर नहीं पता होता कि नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हम सब इस दुनिया में एक ऐसे जहाज में, टिकट है इसका वन वे, यानी रिटर्न टिकट कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये जिंदगी से मौत का सफर, वापसी नहीं। कॉस्ट क्या है ये सफर, कितने में? फ्री है, कोई पैसा नहीं है इसका। रिजर्वेशन कौन सी है? कंफर्म है, मेरी भी कंफर्म है, आपकी भी, बस हमें पता नहीं है इसीलिए खुश है, वरना तो शायद पहले से खत्म हो जाए जी। किस किस को ये टिकट मिल सकते हैं? हर आदम के बच्चे को, नेम उसका जो भी है, आदम का बच्चा। कहाँ से बना है वो? मिट्टी के टुकड़े से बना है, पीस ऑफ क्ले। एड्रेस क्या है? जमीन पे रहता है। कौन सी जुबान है? यानी इंसान दुनिया के किसी हिस्से पे भी रहे, कहीं भी रहे, उसको वहां रहना होगा। साथ क्या उस फ्लाइट में लेके जा सकते हैं? 5 मीटर सफेद कपड़ा और थोड़ी सी कॉटन। कितना लगेज उसके साथ जा सकता है? जितना मर्जी, यानी जो अनलिमिटेड है। नंबर एक, गुड डीड्स, अच्छे काम, गुड कंडक्ट, अच्छे अखलाक, किरदार। टाइम स्पेंट इन इवेंट्स इनवाइटिंग, यानी वो वक्त जो उसने इंसानियत को अच्छे कामों की तरफ दावत देने में इस्तेमाल किया और बुरे कामों से रोकने में। फिर इल्म हासिल करने में जो वक्त लगा और उसको जो इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से। और वो बच्चे जो उसने अपने हाथों से पाले और उनको अच्छा मुसलमान बनाया। ये सब सामान फ्री है, जितना मर्जी ले जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद ये है कि अपार्ट फ्रॉम दीज एंड लगेज, के इसके अलावा अगर आपके नामे अमाल में कुछ और है तो ये आपके अपने रिस्क पे, कहीं भी पकड़े जाएंगे कि क्या किया था और क्या नहीं किया था। सफर की कुछ डिटेल्स हैं, इसको देख लेते हैं। शुरू कहाँ से होगा? दुनिया के किसी खत्ते पे। कोई नहीं कहेगा कि मक्का पहुंच जाओ तो वहां इसकी जान ले। अच्छे कामों में भी जा सकते हैं, बुरे में भी जा सकते हैं। पहुंचना कहाँ है? दूसरी दुनिया में, डेस्टिनेशन। और बोर्डिंग पास की कोई जरूरत नहीं, पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, दूसरे ट्रेवल डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी है। यानी हमें इस सफर के लिए कोई टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं, हमारा काम किया जा रहा है। और टेम्परेरीली होटल की अकोमोडेशन भी है, वो कौन सा वो भी अभी देख लेते हैं। टाइम ऑफ डिपार्चर, टाइम ऑफ डेथ है, किसी वक्त जब मौत का वक्त आएगा उस वक्त जाने का वक्त आ जाएगा। अकोमोडेशन कैसी मिलेगी? रूम साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लेंथ एंड 2 मीटर डीप, यानी 2 मीटर लंबा और 2 मीटर गहरा कमरा। देख लीजिए कौन सा होगा, कवर ही है ना। रूम एंड फ्लोर इज फर्निश्ड बाय वेट सैंड एंड स्मॉल पीस ऑफ स्टोन। जिस रूम में आपको रखा जाएगा वो नीचे मट्टी और रेत के टुकड़ों से बना हुआ है। चाहे दुनिया में कोई अमीर था या थी, गरीब था या अमीर, उसको इसी कमरे में रखा जाएगा होटल के। थोड़ी मजीद डिटेल्स, वहां क्या कुछ मिल रहा है? एयर कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन, एयर कंडीशन नहीं। पानी होगा? नॉट अवेलेबल। इलेक्ट्रिक पावर, बिजली होगी? नहीं होगी। टेलीफोन होगा? नहीं होगा। टीवी चैनल्स हैं, या पैराडाइज चैनल है या फायर है, कब्र में खिड़की खुल जाती है या जन्नत की या जहन्नम की। न्यूज़पेपर, बुक्स अवेलेबल हैं? कोई भी नहीं है। रूम सर्विस क्या है? आपकी अल्लाह ताला के साथ जो ओबीडियंसी थी, जो इताअत थी, उस पर डिपेंड करता है। नेकों के लिए वहां बहुत फैसिलिटीज होंगी, बदों के लिए कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये देख लीजिए, ये है वो कमरा। हम में से कितने लोग हैं जो दिन में एक बार कम से कम अपनी कब्र को याद करते हो? कभी आप जिंदगी में अपने आप को जरा इस घड़े में डाल के देखें। आज ही अभी मैं बात कर रही थी बाजी से, किसी की बात हो रही थी कि वहां इतना छोटा कमरा बनाया हुआ है कि कोई अंदर जाएगा तो उसको खौफ आएगा, और खिड़की नहीं और दरवाजा नहीं। तो आप देखिए कि हमें इससे कितना डर लगता है। ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर रहना है उसमें, फ्यू सेकंड्स और मिनट्स टिल द डे ऑफ जजमेंट, यानी चंद सेकंड भी रह सकते हैं और क़यामत के आने तक इस जगह रहना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मुसाफिरों के लिए जिन्होंने वहां पहुंचना है। हर मुसाफिर को इस चीज की रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने जहन में रखें, और वो क्या है कि ये टिकट जो है ये ना तो चेंज होंगे और ना किसी दूसरे को दिया जाएगा, यानी मेरी मौत का वक्त है तो किसी और को मिल जाए, ये नहीं हो सकता। हर एक को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जहाज के पायलट जो कि मलकुल मौत है इसराइल, उनके ऊपर नजर रखे, किसी वक्त भी उसकी मौत का फरिश्ता आके उसको ले जाएगा, कोई मना नहीं कर सकेगा उस वक्त। कहाँ है इंस्ट्रक्शन उस सफर की? होली कुरान और सुन्नत में। इस दुनिया में पढ़ लीजिए कि वो सफर कैसे अच्छा गुजरेगा, उलमा से और स्कॉलर से पूछ लीजिए, और ये भी है कि ये जितनी जल्दी मुमकिन हो ये इल्म हासिल कर लें, क्योंकि सफर शुरू होने वाला है, और सफर में होना क्या है ये आपको दुनिया में बताने के लिए अल्लाह ने बहुत सारे बंदे रखे हैं। और इसके अंदर ये है कि ऑक्सीजन वहाँ नहीं होगी, ऑक्सीजन मास्क नहीं दिया जाएगा और ना वहाँ उसकी ज़रूरत होगी। और इसी तरह से इंसान का जब सांस बंद होगा तो उसके बाद एकदम उसका दम घुट जाएगा, यानी मूमन और जहाज़ों में कहते हैं ना कि आपको मुश्किल वक्त में मास्क दे दिए जाएंगे, तो वहाँ नहीं होगा। हर एक ये सोचे कि मेरे टिकट में भी बोल दिए गए हैं, कंफर्म हो गए हैं, किसी वक्त भी मेरा टिकट जो है वो मेरे लिए तैयार हो जाएगा। आई एम माई सेल्फ ऑल्सो टू बी अटेंडिंग द फॉलिंग बाई टू डे टूमारो, शायद मैं आज या कल मैं भी इस सफर पे चल पड़ूं। डेथ इज अ रियलिटी, मौत एक हकीकत है। Everybody should face, taste the death and the falling. हर एक को मौत को चखना है, और फिर उसके साथ साथ हमेशा तैयार रहिए, अपनी ज़िंदगी के स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शंस कुरान और सुन्नत से पढ़ने की ज़रूरत है। 5 नमाजें इसके लिए लाजमी है, मस्जिद में जाके मर्द पढ़ेंगे जमात के साथ, कुरान पढ़ना है, सुन्नत को पढ़ना है और इनको प्रैक्टिस में लाना है। जिस सवारी पे आपको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा वो कौन सा है वो भी देख लीजिए, 4 लोगों के कंधों पे बैठ के जाना है, ये है वो चारपाई जिस पे हर एक को लिटाया जाएगा। लास्ट जर्नी इज रेडी, इसके ऊपर बैठ के जाना है। मुसाफिर को बिल्कुल हरकत किए बगैर वहां लिटा दिया जाएगा, यानी हरकत नहीं कर सकता और फील नहीं करेगा, जिंदगी उसमें नहीं होगी। कोई अपने लिए वो उस वक्त अपने आप को पाक करने का अरेंजमेंट नहीं होगा। ये देखिए कि आखिर में हम सबको इसी तरह गुसल दिया जाएगा ना, हम कितने आराम से बैठे हुए हैं, 3 कपड़े के टुकड़े हैं जिसके अंदर कफन दिया जाएगा, सर से पांव तक, हेड टू टो। देखिए जरा दुनिया में जरा मुंह के ऊपर कपड़ा आ जाता है ना तो हमारा हाल क्या होता है, और उस तरह पूरे ऊपर नीचे रस्सियां बांधकर कब्र की तरफ ले जाएंगे, और फिर वहां काम आएगा मालिक यौमिद्दीन, फिर अमीर हो के गरीब हो जैसे भी हो जो करते थे वहां जाके अल्लाह की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, फिर वहां हर एक को इसी के अंदर रहना होगा। हर एक अपने आप को सोचे इस वक्त, किसी दूसरे को सोचने की जरूरत नहीं, ये फिक्शन नहीं है ये हकीकत है। कोई कह सकता है हम में से कि आज की रात हम वाकई अपने बिस्तर पे ही सोएंगे? किसी की भी तो आज बिस्तर, इसके अंदर मौत आ सकती है। मस्ती किस बात की है, लापरवाही किस बात की है, हम किस चीज की तैयारियां करते हैं? आप देखिए कि जब मैयत को रखते हैं, आप ये देखिए इसके बंद खोले जाएंगे, इसके बाद इसको फिर उस कब्र के अंदर, अब इस मंजर को जरा देखें और आप अपने ऊपर लेके देखें कि कब्र जो हमें दिखती है उसके भी एक कोने पे मैयत को करके ऊपर इस तरह से आड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं, और जब आखिरी पत्थर लगता है तो सोचिए कि अंदर कितना अंधेरा होगा। ऊपर मट्टी, कितना बंदा नफासत पसंद बनता है, मट्टी नहीं लगने देता कपड़े को, और इस खामोश शहर में छोड़कर लोग हमें आ जाएंगे, और उस वक्त फिर हम अपने रब को देखेंगे, और हकीकत में फिर मालिक यौमिद्दीन की जरूरत पड़ती है। अगर आज बिस्तर पे लेट के अगर हम ये चंद तस्वीरों को देखें और सोचें तो फिर हमें पता चलेगा कि ये हकीकत है कि झूठ है। ये बहुत धोखा है हमारी आंखों में आज हम पता नहीं किन ख्वाबों में खोए हुए हैं, मिलता फिर भी कुछ नहीं है, असल मिलेगा तो वहां मिलेगा। इसलिए फिर बंदा अल्लाह की तारीफ के बाद उसको पुकारता है कि या का ना बोलो, अल्लाह अब यकीन आ गया तो ये तेरी इबादत, बस मैं तेरी बंदी, बंदगी गुलामी सबमिशन, मुझे तेरे सिवा किसी का डर नहीं, मुझे तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं, जो तू कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं तो तुझसे तुझसे मानूंगी। फिर इंसान अल्लाह की बंदगी के रंग में झुकता है, वैया का नस्ताइन। सिर्फ एक आयत आप देखें, आयत नंबर जो 5 आपके सामने, ये बंदे का तारुफ है। 3 आयतों में शुरू में अल्लाह का तारुफ था और एक में बंदे की हस्ती, और अल्लाह की हस्ती समझ ही नहीं आती जब तक बंदे को अपनी कमजोरी का एहसास ना हो। चलते चलते पांव मुड़े ना तो हमारी टांग टूट सकती है, ठोकर खा के वही फर्श जो बड़े प्यार से बनाया था वही हमारे अपाहज होने का जरिया बन सकता है। कैसे हम अपने कदम मारते हैं इस जमीन के ऊपर, और अगर एक मारा हुआ कदम उसकी धमक हमारे दिमाग में पड़े तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ सकता है। हो क्या तुम, बनते क्या हो? वो इंसान जो दिन में कम से कम 2-3 बार तो बाथरूम में जाए और अपनी गंदगी खुद साफ करे, उसको तो कोई हक नहीं है बड़ा बनने का। फिर अकड़ देखे हमारी ज्योति है, फिर हम कहते कोई हमसा हो तो सही। कभी कोई एक शादी, कोई मौका, कोई फंक्शन, कोई देखिए, हर बंदा उस वक्त ऐसे लग रहा होता है कि बस आज जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, मुझे देखो। पहले तो पहनने के लिए सिलाते थे ना, अब दिखाने के लिए हम पहनते हैं, खुद को अच्छा लगे न लगे दूसरे के लिए हम करते हैं। लेकिन इंसान अपनी औकात को पहचाने, और कभी दूसरों का खौफ आए ना आपको तो ये सोच लिया करे मैं उससे डरूं जो खुद अंदर इतनी गंदगियों से भरा हुआ है। एक हल्की सी हवा जिस्म से निकलती है कितनी बदबू आती है, तो उस वक्त सोचिए मेरे अंदर क्या है, तकब्बुर जेब देता है। हम अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते, जरा सोचिए तो सही। गेटअप खराब हो जाएगा, हाल हुलिया खराब हो जाएगा, मैं बैकवर्ड लगूंगी, मैं बड़ी लगूंगी, मैं अनपढ़ लगूंगी, और कहते ये कि अल्लाह बात तेरी मानूंगी, या का ना बुदो या का नस्तैन, कितना बड़ा झूठ है। अल्लाह ने हमें बनाया और उसी के कहने पे अपने आप को हम नहीं रख सकते, तो क्या वो फिर हमें पटक के नहीं मार सकता? क्या औकात क्या है हमारी, कितनी दफा दिन में मैं अल्लाह को नाराज करती हूँ सिर्फ इसलिए कि लोगों में अच्छी रहूं, लोग मुझसे खुश हों। अकेले हम बड़े अच्छे होते हैं, 4 लोगों में जाते हैं हमारी अकड़ बदलने लगती है, फिर हम अल्लाह की बजाय दूसरों के आगे झुकते हैं, और मदद भी फिर दूसरों से, फुला मेरी मदद कर दे, फुला मेरी कर दे। कह नहीं, अल्लाह मुझे समझ आ गया कि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं। देखिए ये दुनिया जिस तरह छोटी है ना, इसके गम भी छोटे हैं। कभी बहुत दुखी हो ना तो हंस पड़ा करें, कहना शुक्र है गुजर जाएगा ये वक्त, कौन सा रह जाना है। और कभी बहुत खुशी में आपे से बाहर होने लगे ना, अल्लाह की हदें तोड़े, तो कहा करें कि ये भी नहीं रहना। एक मैंने कहानी कहीं शेयर की थी पहले भी, कि बादशाह था तो उसको आदत क्या थी कि जब बहुत गम होता था ना तो इतना रोता धोता था कि छिछोरी अजीबोगरीब हरकतें करता था। फिर बाद में जब नॉर्मल होता तो उसको बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि बादशाह सलामत। अब जैसे एक मर्द रो पड़े तो अजीब लगता है ना, उसको बाद में शर्म आती थी कि लोग मेरी बात मुझे बुरा समझते हैं। और दूसरी उसकी खामी क्या थी कि जब वो बहुत खुश था तो उसको खुशी में इतनी छिछोरी हरकतें करता था, आपे से बाहर हो जाता था, कि बाद में फिर उसको उस पर भी एम्बेरसमेंट होती थी, शर्मिंदगी होती थी। खैर उसने किस लोगों से कहा कि मेरा इलाज करो, मैं अपनी सादत से बहुत तंग हूँ। खैर किसी ने क्या करना था, कोई कुछ ना कर सका। एक दफा एक शख्स आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं आपका इलाज करता हूँ। कहा क्या? कहने लगा कि मैं आपको एक अंगूठी दूंगा, आप उसको अपनी उंगली में पहन लें, जब आप बहुत दुखी हो तो बस एक दफा उस अंगूठी को देख लें, और जब बहुत खुश हों और बेकार हरकतें करने लगे तो भी इसको देख लें, तो बस आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा, होगी कोई जादू की अंगूठी? कहा ठीक है। और वाकई उसने एक बड़ी सी अंगूठी बना के उसको दे दी। वो यही हुआ, जब वो दुख में उसको देखता तो एकदम संभल जाता, ठीक हो जाता, और जब बहुत खुशी में उसको देखता तो भी बहुत ही ज्यादा परेशान, मतलब नॉर्मल हो जाता और वो हरकत ना करता। और इस तरह उस बादशाह की आदत चली गई। क्या लिखा हुआ था उस अंगूठी पे? उस शख्स ने सिर्फ 2 जुमले लिखवाए हुए थे उसमें, यानी 2 लफ्ज कह लीजिए कि इंग्लिश के लफ्ज कह लें या उसको उर्दू में कि दिस विल पास सून, ये भी गुजर जाएगा। गम में जब वो इस जुमले को पढ़ता था कि ये वक्त गुजर जाना, एक वक्त आएगा, तो उसको सुकून आ जाता था कि इतना ना दुखी हो। और जब खुशी में देखता, बहुत चौड़ा होके देखने लगता तो कहता ये भी गुजर जाना है, तो उसकी खुशी जरा कम हो जाती थी। यही बात अल्लाह ने सूरह हदीद में भी कही है कि जो चला गया उसका गम क्यों करते हो, और जो है उसकी खुशी ना करो, ये सब जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बच्चा फौत हो गया, बीमार था, तो बाप को बुलाया। आप उस वक्त दीन के किसी काम में थे, आप नहीं गए। आज हम होते हैं तो कहते लो अब्बा को तो मेरी फिक्र ही नहीं है, लेकिन दीन के कामों में दुनिया हटेगी। ये नहीं हो सकता कि आपकी दुनिया के भी अपडेट रहे और दीन भी हो। अल्लाह के रास्ते में बहुत कुछ करना पड़ता है, यही तो छोटी छोटी कुर्बानी है, और हम करते क्या। खैर, अल्लाह के नबी नहीं गए, दोबारा पैगाम आया कि अब तो वो बच्चा फौत हो गया, आपकी बेटी का बच्चा था। फिर आप गए और आपने फिर दुआ बेटी को पढ़ के दी कि जो आज भी हम में से बहुत सारों को नहीं आती, हम कितने अफसोस करने जाते हैं घरों में इधर उधर, नहीं पता का इन्ना लिल्लाहि मा खजा, अल्लाह ही का था जो ले गया, वलहू मा आता, और उसी का है जो उसने दिया हुआ है। कुल्ला शैन इंदहू बि अजल मुसम्मा, हर चीज हमारे पास एक खास वक्त के लिए आई है, थोड़ी देर की बात है। फल तस्बिर वल तहतसिब, यानी सब्र करो और इस पर अल्लाह से जजा मांगो। ये ताजियत की दुआ है, कितना सुकून मिलता है। ये कुल्ल शैन इंदना बि अजल मुसम्मा, ये चंद दिन की जिंदगी है, इस पर रहकर क्या थक्के खा के जाओगे दुनिया से। आज कब्र की रात हो गई तो कौन सा खुशी, कौन सा गम वहां याद रहेगा, और कौन सी खुशी याद रहेगी, कौन कितनी दौलत जाएगी साथ, कितने कपड़े साथ जाएंगे, और अगर साथ जाएं तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए या कना बुदू या कनस्ता, अल्लाह बस मुझे अपना बना ले, दिल से मांगे। देखे ये ऊपर की दुआ नहीं मांगी जाती, दिल से मांगे कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे, अल्लाह मेरी 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 सोच बदल दे, मुझे अपना बना ले, मुझे ऐसा बना ले कि कल तू मुझे देखे तो तुझे मेरे ऊपर प्यार आ जाए। हम लोगों के लिए ये सोच रहे होते हैं, मुझे ऐसा बना दो, मेरे बाल ऐसे बना दो, मैं ऐसी लगूं, मैं वैसी लगूं। लोगों को क्या आप अच्छे लगेंगे, लोग तो खुद इस गम में होते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, आपको किसने देखना है उस वक्त। असल बात है कि बंदा रब की नजरों से देखे, और जब अल्लाह का मुकाम समझ आया, अपना समझ आया, तो फिर कहा कि अल्लाह तुझसे मांगना है, और मांगने की चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कीमती चीज मांगूंगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ, ये है वो रास्ता जो हमने पीछे बात की है, जिंदगी गुजारने का रास्ता। खुशियां कैसे मनाऊं, गम कैसे हो, बच्चे कैसे पालूं, घर कैसे बनाऊं, शौहर से कैसे डील करूं, माँ से कैसे डील करूं। अल्लाह तू मुझे गाइड कर और मैं तेरे कहने पे चलता जाऊं। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, भटके हुए और गुमराहों का नहीं। यानी ऐसे लगता है कि इंसान इस वक्त थक के कहता है कि अल्लाह मैं थक गई हूँ गुनाह कर करके, बहुत नाफरमानियां की हैं, अब तू बस मुझे अपना बना ले। आज तक देखिए हमने कितने लोगों को खुश किया, क्या सब खुश हो गए, नहीं हुए ना, तो क्यों ना रब को खुश करें। वही काम आएगा, वही हमें जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाएगा, और एक दफा आपने उसकी नजरों से खुद को देखना शुरू कर दिया, आपको इसकी परवाह भी नहीं रहेगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हर नमाज में, आज अभी इसके बाद जो नमाज पढ़ेंगे ना, इस सूरत फातिहा को शऊर के साथ पढ़ें, समझे, गौर करें, फिक्र करें, फिर इसके ऊपर तदब्बुर करें कि अल्लाह तू मेरे लिए इस मामले को आसान कर दे। ये दिन में जो 5 दफा हमें सूरत फातिहा पढ़ाई जाती है, वो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि सिराते मुस्तकीम करो, पढ़ मांगो। और हमारा हाल क्या है कि जब कोई मरता है तो कहते हैं फातिहा खानी करो, फातिहा पढ़ाओ इन पे। जरूरत जिंदों की थी, हम मरने के बाद सूरत फातिहा पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह जब जिंदगी का रुख बदलने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ऐसे खूबसूरत तरीके से चेंज हो चुके होंगे। और याद रखिए, चेंज का मतलब ये नहीं कि बुरका पहन लेंगे, पर्दा कर लेंगे, हमारे यहाँ जहन में यही आता है, पहले दिल आपका खुश होता है। जब एक दफा अल्लाह की मार्फत जो हो गई, तो क्या आप ये पूछेंगे कि ये गज का कपड़ा पहनूं कि ना पहनूं, और सर पे रखूं कि कंधे पे रखूं कि चेहरा छुपाऊं, ये तो बहुत शर्म की बात है। जिससे मोहब्बत होती है बंदा तो उसके लिए पता नहीं क्या करना चाहता है। और जब तक हम खुद और अपनी नस्लों को इस अल्लाह की मोहब्बत में नहीं जोड़ेंगे, ना वो हमारी खुशी का सामान बनेंगे, ना अल्लाह के बनेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। इंशाअल्लाह ताला सूरत फातिहा की तफसीर आप मजीद भी सुन सकते हैं वेबसाइट पे भी, जैसा कि आपको बताया गया nurulquran.com पे आपको मिलता है। इसी तरह एक सी मेरा DVD आज थोड़ी सी आई थी, मैं चेक करती हूँ अगर है आपके लिए, अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो आप लोग ले। और इसमें पूरे कुरान की तफसीर है, तो इसमें खास तौर पे सूरत अल फातिहा की भी तफसीर शुरू में, अगर आप बाद में आज अगर जाएंगे तो सुनना चाहें। ये 4-5 ही रखी थी मैंने, वो दूसरी तो नहीं लिया। बेसिकली ये सीडीज जो है हम सदका जारिया के लिए बनवाते हैं, ये पूरा कुरान है इसमें, यानी 87 आवर्स हैं गालिबन, यानी अगर आप ये गाड़ी, आजकल गाड़ियों में डीवीडी प्लेयर्स भी आ गए हैं, घरों में भी हैं जिसपे मोस्टली लोग मूवीज वगैरह देखते हैं वीसीआर की जगह पे, तो ये डीवीडी प्लेयर में चलेगी और इसमें आप चलाएंगे तो सूरत फातिहा से लेके सूरत नास तक चलती रहेगी। इसके ट्रैक्स हैं, सूरतें हैं, वो सब फोल्डर्स आपको दिखते हैं। दौरे कुरान रमजान में जैसे आप में से कुछ लोगों ने अगर किया, तो ये हमारा एक दौरे कुरान है जो मैनचेस्टर में हुआ था। सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर सुन लें, आज तो मैंने बस आपसे बातें की हैं, लेकिन तफसीर अगर थोड़ी ये, लेकिन इससे भी डिटेल्स और हैं वो बाद में इंशाल्लाह हम सुनेंगे। और अगर आप इसमें ये है कि अब आप ज़ाहिर है जब भी ये बुक्स और ये चीज़ें यहाँ आती हैं तो लोग पूछते हैं कि इनकी कीमत क्या है। ऑफकोर्स कीमत तो बनती है, ये भी कल ही बल्कि बन के आई हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि बेचना एक लफ्ज़ अजीब लगता है, तो इसके लिए हमारा जो शुरू में वहाँ से भी तरीक़ाकार ये है कि हमने एक सदका जारिया फंड बनाया हुआ है, उसके अंदर ही पैसे डालते जाते हैं और उसी से लेकर जैसे ये सीडीज अब बनवाई हैं, इसकी कीमत सबसे बड़ी तो ये कि इसको सुनना है, इसको जाया नहीं करना, क्योंकि जिसने भी इसमें पैसे डाले उनके वेस्ट हो जाएंगे, किसी के भी लगते हैं। और दूसरी बात है कि आप सुन के दूसरे को दूसरा दे, इसकी कॉपीज भी करवाना चाहें तो करा सकते हैं, इसकी इजाजत है, और आप लोग सुन के इसको रखें। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे ऑन गोइंग करते रहें, जिसका जो दिल चाहे, शायद अगर है इधर बॉक्स तो आप देना चाहें डाल दीजिए, इसमें इंशाल्लाह हम हर वीक कुछ ना कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे, देखे आएंगे। इसी तरह ये बुक्स हैं, आप लोग हर वीक आते हैं तो अपनी बुक साथ ले जाएं। इसमें भी ये भी बुक्स ज़ाहिर है कि स्कूल ही की इमानत है, पैसों की है, इस कीमत की बुक जितने की भी कोई आती है वही इसकी कीमत है, लेकिन वही हम फिर उसमें भी यही करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में अपनी खुशी से डालें, क्योंकि हम इस तरह भी इसको नहीं डेवलप कर पाए कि भाई आपको एक एक चीज का पैसे दें और सिर्फ कोई ये सोच के ना लेके मैंने पैसे नहीं देने, कोई भी नहीं देगा, ऐसे भी ले जाएं, आपको इजाजत है, कोई मना नहीं है। और इंशाल्लाह इसमें हम लोग खुद डालते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि ये चीज आपकी जरूरत है तो इसको आम जरूर करें। आप अगर अगली दफा आने तक अपने साथ सिर्फ आप एक को ले आए, आप जितने आए अगर सिर्फ आज नियत करें ना वन, जैसे बाय वन गेट वन, सिर्फ एक एक को आप पूरे, क्या आप इस पूरी कम्युनिटी में से किसी एक को नहीं कर सकती कन्विंस के अपने साथ लाऊं, ये असल आपकी कीमत है। और इंशाल्लाह आज जो हमने इसको किया, अगले वीक इसका थोड़ा सा खुलासा भी करेंगे, और अगले वीक इसमें आपकी अगला लेसन है सूरत बकरा का चलेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि कुरान को जब हम उसको अल्लाह की रहनुमाई में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के लिए बेहतरीन तरीके से इसको फायदा मंद बना दे। कोई सवाल, कोई बात जो आपके जहन में हो तो पूछ लो, नहीं तो भी यहाँ रुकते हैं। 5:30 है ना नमाज, 5:15 ठीक है। अगर देखिए आप सब 3 बजे अगर आ जाएं पूरे, आज भी कुछ लेट आए हैं आप लोग, तो जब आप लोग नहीं आते तो फिर हमारे दिल में इस चीज़ का तड़प होती है कि आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। 3 बजे पूरे शुरू हो जाएगा, और लेसन पे डिपेंड करते हैं, कुछ लेसन लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उसके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। आदत नहीं होनी चाहिए, जाना चाहे तो जा सकती है, वहां जाके कोई वावेला रोना धोना नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बस वो मेले ठेले वहां उर्स मनाना जैसे चिरागा करना वो चीजें नहीं है। जैसे मर्द जा सकते हैं वैसे औरतें भी जा सकती हैं, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ रुकते हैं, फिर नरीन दुआ करा दे।
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك ناسية بيدك ماز في حكمك عدل في قضاك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن بسيما ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وزحاب حملي وهمي. اللهم اكسر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحبب علينا مسار الدنيا. اللهم متنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احيشتنا، واجعل كل اسم لنا واجعل بصارنا لنا من جنتك، وانصرنا على من اعدانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربي اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، وانصرني ولا تنبغى علي. ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رحبا لك مطيعا عليك مقبتا قوامني بالربي تقبل توبتي واكسر خوفتي واجد تابتي وثبت حجتي واخذي قلبي وسدد لساني واصلح سخيمة قلبي. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبيلا وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربي زدني من ملحقني بالصالحين. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني. اللهم اني اسالك عداوتك والعفاف والغنى. اللهم اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اوصني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إليك وإني من المسلمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخمر، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا رب العزة، جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ ہم نے جانا یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے والے بنا، یا اللہ اس قرآن کا سچا فہم عطا کر دے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے نافیہ چیزوں میں شامل کر دے. بدائی ہمیں دنیا کے نفے ملے ہیں، اللہ ہمیں آخر کے نفے بھی عطا کر. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو اس کام میں ہماری شریک بنا. یا اللہ تو ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنی ذات کے لیے ہماری محبت کو سچا کرتے ہیں. اے اللہ اس دنیا کے غموں سے نکل کے اپنی آخرت کا غم نہیں ڈالتے. یا اللہ جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں رب العزت انہیں دور کر، اللہ انہیں معاف کر دے. یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں اپنی اصلاح کا موقع دے. یا اللہ تو ہماری اس حالت میں ہمیں دنیا سے لے کے جانا کہ تو ہم سے راضی ہو. یا رب العزت جو بھی غلطیاں اب تک کر چکے، یا اللہ آگے کی زندگی شعور کی زندگی بنا دے. یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا رحم کر. یا اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑوں پہ اپنا رحم کر. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی خیر اور عافیت کا نزول فرما. یا اللہ تو ہم سب کے گھروں کا صحیح مسلمان گھرانے بنا. اللہ کی توفیق دے. یا اللہ تو ہم سب پہ اپنے رحم فرما. یا اللہ ہم سب تو سنی الفاظ میں دعا مانگتے ہیں جن میں تیرے پیارے نبی نے مانگی. یا اللہ جیسے آپ نے ان کی دعاؤں میں حق سے قبولیت بخشی ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر. اللہ معصر آکی باتا نفر امور کلی ہوں بے جنہ من حصہ دنیا عذاب الاخرہ. اللہم اینا نسالکا خیر من سالکا نبی نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعاذ منه نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. آمین.
ایک چھوٹی سی دو تین منٹ کی پوئم ہے پیراڈائز کے بارے میں کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا. اس کو سنتے آپ لوگ اٹھنا چاہیں تو بات.
Close your eyes and imagine this eternal bliss, your every wish at your fingertips and more, perched on a throne near a stream so serene and exquisite a scene you've never seen, yet you still dream of more. Gone is pain, gone is fear, gone is grief, gone are tears. Idle speech you shall never hear, and the prophets make up your social sphere, and more. The martyrs, righteous and the truthful too, you are from them and they from you. They held tightly to what they knew was true, and to join them you did too. There's more. Maidens chased to restrain their gaze, lost in a glance for days and days. Fun and frolic as a child plays, where the breath that leaves your lips is praise of the one who gave you more. Imagine you and your father with ages the same. Imagine showing off your book with no shame. Imagine nights with the Sahaba, their stories to entertain. Imagine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam knowing your name. What could be there more? Gardens underneath which rivers flow, a goal so far and yet so close, a journey worth taking for those who know. Tell me, do you not wish to go for more? For all the bounties and all the grace, all the sights and the smells and the taste will be forgotten without a trace, as if frozen in time and space, when you see his face. What an excellent master of a miserable slave. You forgot and he forgave. He gave you guidance, and you still strayed. You asked for mercy. That he gave, and more, and more, and more.
Understand? جی کافی ہے. جنت میں جتنی بھی نعمتیں وہ اس میں تھی, آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا نا کہ سب سے زیادہ اس دن خوشی کیا ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں. ٹھیک ہے, چلیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز میں ٹائم کم ہے اس لیے بس جو ہے گھر پہنچ
ٹائم. آپ لوگ پلیز کہنے کا انتظار کیجیے گا, یا تو اپنے پلیز سب نمبر نوٹ کروا کے جائیں اپنے نام کے ساتھ تاکہ آپ کو میسج پہنچ جائے. اور جن لوگوں کو میرا خیر میسج دیے ان میں سے کوئی ایک آدھی آئے ہیں, باقی سب نہیں آئے. تو پلیز یہ رسپانسبلٹی آپ سب شیئر کر لیں کہ جن کو اطلاع دینی کسی کو. نصرت ابھی تو الحمد للہ پہلے اس کام میں ہوتی ہیں, تو جو بھی آپ کے قریب ہیں واک کے راستے میں ہیں ان کو آپ خود انفارم کرتے ہیں. جائیے کہ ایک